ఓం శాంతి, ఓం శాంతి, ఓం శాంతి. ఆజ్ హమారే బీచ్ ఆదరణీయ రాజూ భాయ్జీ ఉపస్థిత హై. హమ్ సభీ ఏక్ హాత్ కీ తాలీ సే భాయ్జీ కా స్వాగత్ కరేంగే. వేసే తో హమ్ భాయ్జీ కో జాంతే హీ హై, పర్ ఫిర్ భీ సంక్షిప్త పరిచయ భాయ్జీ కా మే ఆప్కో దేనా చాహుంగీ. ఆదరణీయ రాజయోగి బికే రాజూ భాయ్జీ బ్రహ్మా కుమారీ సంస్థాన్ మే ప్రతిదిన్ సునాయ్ జానే వాలే పరమాత్మ మహావాక్యం కే లిఖిత సంకలన మురళీ విభాగ కే ప్రముఖ హై. పరమాత్మా పితా సే అవ్యక్త రూప మే ఆప్కో దివ్య బుద్ధి కా వరదాన్ మిలా హువా హై. ఆప్ మధుబన్ బ్రహ్మా కుమారీ ముఖ్యాలయ మధుబన్ కే నివాసీ హై. ఆప్ యహీ సే గ్రామీణ సేవా ప్రభాగ కే ఉపాధ్యక్ష కే రూప మే అప్నీ సేవాయే దే రహే హై. ఈశ్వరీయ జ్ఞాన కా మనన్ ఆప్కా రుచికర విషయ హై. ఈశ్వరీయ జ్ఞాన కా మంథన్ కర్ ఆప్ మురళీ కా సార్ వరదాన్ ఏవం స్లోగన్ మక్ఖన్ కే రూప మే సభీ ఆత్మాఓ కో పరోస్ కర్ ఉనే ఈశ్వరీయ తందరుస్తీ ప్రదాన్ కర్తే హై. స్వ ఉన్నతి హేతు ప్రకాశిత మాసిక పత్ర పుష్ప ఆప్కే ద్వారా హీ ప్రకాశిత హోతా హై. ముఖ్యాలయ సే హోనే వాలే పత్ర వ్యవహార్ దాదియో కే బిహాఫ్ పర్ ఆప్ హీ సంభాల్తే రహే హై. ఆప్కా జీవన్ సాదగీ తపస్యా ఔర్ నిరంతర సేవా కా సుందర్ ఉదాహరణ హై. ఆప్ విశేష రూప సే మురళీ కే గూఢ రహస్యో కో సహజ ఔర్ హృదయ స్పర్శీ శైలి మే సమజానే కే లియే ప్రసిద్ధ హై. ఆప్నే సాకార్ బాబా మమ్మా ఏవం దాదియో కీ పాలనా లీ హై. ఆప్ సాకార్ పాలనా ఏవం దాదియో కీ అన్మోల్ శిక్షాఓ కా ఆప్కే పాస్ అఖుట్ భండార్ హై. ఆప్కీ క్లాస్ మే హమే సాకార్ పాలనా కే రమణీక ఔర్ గహరే అనుభవో కా లాభ మిలేగా. ఆప్కే ప్రతి అప్నే భావ సుమన్ అర్పిత్ కర్తే హూ. సాదగీ తపస్యా ఔర్ సేవా కా సుందర్ సంగమ్ హై ఆప్. సాదగీ తపస్యా ఔర్ సేవా కా సుందర్ సంగమ్ హై ఆప్ రాజూ భాయ్జీ. సచ్ముచ్ బాబా కే ప్రేమ కా అనుపమ దర్పణ హై ఆప్. సచ్ముచ్ బాబా కే ప్రేమ కా అనుపమ దర్పణ హై ఆప్. ఆదరణీయ రాజయోగి రాజూ భాయ్జీ.
ఓం శాంతి. బాబా కే ఘర్ మే విశేష తపస్యా కర్నే కా బహుత్ అచ్చా సుందర్ అవసర్ ఆప్ సబ్కో మిలా. పాండవ భవన్ కీ భట్టీ బహుత్ అచ్చా లగ్ రహా హై నా? సబ్ బహుత్ మౌజ్ మే హై నా? చారో తరఫ కైసా భీ వాతావరణ హై. దునియా మే తో హల్చల్ చారో తరఫ చల్తీ హీ రహతీ హై. ఏక్ తరఫ ప్రకృతి అప్నా రూప దిఖాతీ హై ఔర్ దూసరీ తరఫ వ్యక్తియో కా ఉగ్ర రూప కిసీ న కిసీ వికార్ కే వశీభూత హోకర్ ఏక్ దూసరే కో దుఃఖ దేతే ఔర్ దుఃఖ లేతే హై. ఔర్ బాబా కే బచ్చే సుఖ దే రహే హై, సుఖ లే రహే హై. ఏకాంత మే బైఠ కర్ కే అచ్చే అచ్చే అనుభవ కర్ రహే హై. సభీ అనుభవ కీ అథారిటీ బన్నే కే లియే ఆయే హై. ఆజ్ కా విషయ హై హర్ సబ్జెక్ట్ కీ అథారిటీ, అనుభవ కీ అథారిటీ కైసే బనే హై. మీఠే బాబా నే హమ్ సబ్కో చార్ హీ సబ్జెక్ట్ పఢాయే హై. సాకార్ మురళీయో మే చారో హీ సబ్జెక్ట్ బహుత్ స్పష్ట. కభీ జ్ఞాన్ కీ పాయింట్స్ ఆతీ హై, కభీ యోగ కీ గహరీ గహరీ పాయింట్స్ హోతీ, కభీ ధారణా కీ బాతే హోతీ ఔర్ కభీ సేవాఓ కీ. తో బాబా నే హమ్ సబ్కో ఏక జైసా పఢాయా, एक ने पढ़ाया और पढ़ने वाले उसको पढ़ करके नंबरवार बने। उसी मुरली से कोई तो सतयुग का था उसी तख्त प्राप्त कर लेता है, नंबर 1 विश्व महाराजन बन जाता है। और वही मुरली सुनने वाला कोई नौकर चाकर दास दासी प्रजा में चला जाता। पढ़ाई तो एक ही है, पढ़ाने वाला भी एक ही है, अंतर क्या आ गया? उसको समझ करके धारण करने में अंतर आ गया, उसके अनुभव में उतर जाना। आज हम सबको, बाबा के हर बच्चे को आत्मा का बहुत अच्छा अनुभव है ना? जब हम अनुभव कहते हैं तो मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझ आत्मा के जो निजी गुण हैं उनका अनुभव होना चाहिए। केवल आत्मा थोड़ी है, आत्मा एक लाइट है, एक माइट है, एक शक्ति है, और उसके अंदर 7 गुण जब संपूर्ण रूप में हैं तो सत्तो गुणी है, सत्तो प्रधान है। और जब वो गुण धीरे धीरे कम होने लगते हैं तो सत्तो प्रधानता से सत्तो रजो तमो, और आज तो तमो प्रधान हो गए सब, चारों तरफ तम अंधकार फैल गया। इसलिए बाबा अपने बच्चों को जब आत्मा का ज्ञान देते हैं, जब हम उसका अनुभव कर लेते हैं, तो जो अंदर का तम है, अंधकार है, वो समाप्त हो जाता है। अपने लाइट स्वरूप में जब स्थित होते हैं कि शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मेरा निजी गुण ज्ञान है, समझ। बाबा को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे बहुत प्रिय लगते, गीता में कहा है ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। लेकिन योगी कोई कम नहीं है, योगी उनसे भी ज्यादा प्रिय है। तो आप सभी ज्ञानी तू आत्मा है ना, ज्ञानी तू आत्मा है माना। सोच समझ कर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाला, ऐसे नहीं बोल दिया निकल गया क्या करूं, वो ज्ञानी नहीं है। अगर आत्मा का संपूर्ण यथार्थ अनुभव है कि मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, जो देखना चाहूँ वही देखूँ, जो नहीं देखने जैसी चीजें मुझे नहीं देखनी है, जो बोलना है जितना बोलना है उतना ही बोलना है, ऐसे नहीं जो बोला सामने बैठे वाले को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। बोल पर भी बहुत कंट्रोल। जिसने आत्म अभिमानी स्थिति का अच्छा अनुभव कर लिया, उसके अंदर 2 पावर आ जाएंगे, चेक करना। एक कंट्रोलिंग पावर, किस पर कंट्रोल? सबसे बड़ा कंट्रोल किस पर चाहिए? मन के ऊपर। मन ही भटकता है, मन ही चंचल है, कितने संकल्प आते हैं, ये वो, कितनी कारोबार में फंसे रहते हैं, बैठते यहाँ हैं और सैर करते हैं कहीं दूसरी जगह, शरीर यहाँ है मन कहाँ है, भाग जाता इधर से उधर, भटक जाता। अगर कंट्रोल में नहीं है तो आज जब मैं भी आया ना योग कराने, कई कारोबार थे, कई बातें थी, फोन पर आते जाते, मैं वहां की वहां रही भाई, अब मुझको सोचना नहीं, बैठ गया करके। कंट्रोलिंग पावर, अपने स्वस्वरूप पर मन को एकाग्र कर लेना, शरीर से हल्का हो जाना, चेक करना। अगर आत्मा का अनुभव है तो क्या मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर है? मन बुद्धि संस्कार, आंख नाक मुख कान हाथ, मेन कर्म इंद्रियां और मुख्य आत्मा की शक्तियां, उनको हम कर्म इंद्रिय नहीं कहते, शक्ति कह रहे हैं। ये अगर 8 मेरे कंट्रोल में आ गए तो हम कह सकते हैं मैंने आत्मा का अनुभव किया है, मैं मालिक हूं। कंट्रोलिंग पावर के साथ रूलिंग पावर आ जाती है। रूल कर सकते हैं हम, जैसे राजा प्रजा पर रूल करता है भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे ही बाबा कहते हैं अगर तुमने आत्मा का सही अनुभव कर लिया और उस आत्माभिमानी स्थिति में नेचुरल रहने का अभ्यास कर दिया, अब नेचर बन गई है देह मान में रहने की। आप सोचो विचार करना, 84 जन्म जिसके साथ हम रहे, 84 शरीर लिए, मान लो सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक। सतयुग त्रेता के अंदर चलो संगम की प्रारब्ध थी, आत्म मानी स्थिति थी, देह मान इतना नहीं हावी था, लेकिन जब द्वापर युग में आत्मा अपने ही को भूल गई और इस बॉडी कॉन्शियस के कारण मैं अभिमान आ गया, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अच्छे कुल का हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरा ये पद है, ये पोजीशन है, अंदर अंदर आत्मा के ऊपर अहम भाव का आवरण चढ़ता गया और इतना गहरा आवरण चढ़ गया है जो नेचुरल नेचर देह मान की बन गई। और संगम पर बाबा करके थोड़े समय में बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे अब नेचुरल देही अभिमानी बनने की नेचर बनाओ। थोड़ा टेंशन तो देना पड़ेगा ना, ऐसे हो जाएगा क्या? अमृत वेले से रात तक एक अभ्यास बताता हूँ करके देखना, जब मैं खुद करता हूँ बताता हूँ। जब सवेरे आँख खुलती है बिस्तर पर उठते हो तो तुरंत बिस्तर से उठ के फेंकना नहीं, जैसे मैं आत्मा ऊपर से इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ, कॉन्शियस है ना, मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ, इस शरीर को मैंने अपना रथ आधार बनाया है, बाबा ने हमें इस शरीर के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के लिए भेजा है। पहला अभ्यास, मैं अवतरित हुई आत्मा हूं। मस्तक के बीच में बैठ जाओ, मैं मस्तक मणि हूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। चिंतन करो, योग इसी चिंतन के आधार से सहज लगेगा। फिर उठो, तैयार हो, बाबा के कमरे में बैठो, मेडिटेशन करो, लेकिन पहले पहले अगर ये आत्मा का पाठ अच्छी तरह से पढ़ लिया तो फिर चलते फिरते कर्म करते भान रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, मेरी ये कर्म इंद्रियाँ हैं, मुझे यहाँ पार्ट बजाने के लिए बाबा ने हमें भेजा है। ये आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव सबसे पहला अनुभव है। अगर कोई बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनकर आत्माभिमानी स्थिति का ही अभ्यास न करे तो योगी जीवन का अनुभव नहीं कर सकता। योग का आधार है आत्माभिमानी स्थिति। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है, आत्मा का पिता परमात्मा है, शरीर का नहीं है। शरीर के भान में रहने वाला कभी परमात्म शक्तियों का अनुभव नहीं कर पाता। अगर मुझे परमात्मा की शक्तियों का अनुभव करना है, मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक कनेक्शन जोड़ करके रखना। कनेक्शन जुटते ही करंट आती है, बिना कनेक्शन के, लूज कनेक्शन होगा तो भी एक माइक नहीं चलेगा। टाइट कनेक्शन, ठीक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। किसका जुड़ा है? तार का तार से जुड़ा है, रबड़ अलग है, ऊपर करंट न लग जाए इसलिए रबड़ है। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा हुआ रहे, देखो सब प्रकार की शक्तियां करंट समय पर साथ देंगे। कई बाबा की मुरलियों में आता है, सुनते हैं हम सब, कि आप कहते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और अभी अभी आवश्यकता है मुझे सहन करने की, मुझे समा लेने की, मुझे परखने की, मुझे निर्णय करने की, मुझे समेट लेने की, लेकिन जब समय बीत जाए फिर क्या यार सहन कर लेते तो अच्छा था, बोल दिया, निकल गया, कह दिया। माना आपने आत्म अभिमानी स्थिति का अच्छा अभ्यास नहीं किया है, मालिक बने नहीं है। ये अनुभव करो, आत्मा मालिक है, राजा है, कंट्रोलर है, और अपने मन बुद्धि संस्कार और अपनी हर कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री पर उसका कंट्रोल है। बिना कंट्रोल, बिना रूल, बिना कंट्रोल के कुछ भी वो नहीं कर सकती है। इतनी अच्छी कंट्रोलिंग रूलिंग पावर केवल आत्मअभिमानी बनने से, उसका अनुभव करने से होने लगती है। आत्मा राजा है, मालिक है, कोई भी इंद्रिय उसे धोखा नहीं दे सकती। और जब धोखा नहीं देगा तो क्या होगा? इन कर्म इंद्रियों से कोई ऐसे कर्म नहीं होंगे जो बंधन बन जाएं। हम सब बाबा के बच्चे ज्ञान और योग सीख रहे हैं बंधन मुक्त बनने के लिए। हमारे सब बंधन जो देह के, संबंधों के, संस्कारों के, बहुत सारे बंधनों में हम सब बंधी हुई आत्माएं दुख अनुभव कर रही थी, बाबा आकर के हमें सब बंधनों से मुक्त करता है। हमें वो मुक्ति नहीं देता है कि जाओ परम धाम में लीन हो जाओ, हमें मुक्ति मिलती है जीवन में रहते मुक्ति, जीवन मुक्ति। किससे मुक्ति? बंधनों से, विकारों से, बुराइयों से। हम सब कहते हैं सतयुग के देवताएं जीवन मुक्त हैं, लेकिन क्या कभी विचार किया देवताओं को बंधन का पता ही नहीं है, तो जीवन मुक्त स्थिति का सुख उनको कहां से मिलेगा? सुख तो वो ले सकता है जिसको पता ये बंधन है, ये निर्बंधन है। हम सब ब्राह्मणों को वर्तमान समय इस जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। ज्ञान का यथार्थ अगर किसी ने अनुभव किया है, ज्ञानी तू आत्मा माना ही बंधन मुक्त आत्मा। अगर किसी भी प्रकार के बंधन में वो बंधी हुई है या बंध रही है, माना इसको ज्ञान अभी तक अनुभव में नहीं आया, सिर्फ लेक्चर तक आया, सुना सकता है, वो अनुभव में नहीं है। इसलिए उसके बंधन कटने की बजाय और जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान क्या बाबा ने दिया? दुनिया में बहुत ज्ञान है, उसको बाबा फिलॉसफी कहता है, लेकिन संगम पर केवल कलयुग के अंत में बाबा को यह ज्ञान देना पड़ा। न सत्युग त्रेता में ज्ञान की जरूरत है, उसकी प्रारब्ध है, और द्वापर कलयुग में जो ज्ञान आया वो शास्त्रों से आया, ऋषि मुनियों को टचिंग आई, उन्होंने लिखा उसको, प्रैक्टिकल नहीं था लेकिन जो टच कर रहे थे वो लिख रहे थे, और वो हम सब पढ़ते आए अभी तक। लेकिन संगम पर बाबा ने आकर के नया ज्ञान दिया, नया ज्ञान दिया जो शास्त्रों में नहीं मिला था, वो ज्ञान दिया, घर का ज्ञान दिया, पर अपना ज्ञान दिया। लोग तो आज तक घर को ही भगवान मान रहे हैं, ब्रह्म ही घर, ब्रह्म ही भगवान, और ब्रह्म घर में रहने वाला कहता है बच्चे वो तो मेरा स्थान है रहने का, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ही भगवान है, और भगवान कह रहा है ब्रह्म तो मेरे रहने का स्थान है। अब इतना बड़ा ज्ञान ज्ञान सागर ने अपने बच्चों को दिया, बच्चे तुम इस नाटकशाला में खेल खेलने के लिए आए हो, पार्ट बजाने के लिए आए हो। बड़ी वंडरफुल बात है, आप इस ज्ञान की बात को अगर समझ जाएंगे ना तो आपको इतना नशा चढ़ेगा। कल मैं मुरली सुना रहा था तपोवन में, पीस पार्क में, तो एक बात आई जिसमें बाबा ने कहा, बच्चे बहुत सरल शब्दों में कहा, सृष्टि एक है, सृष्टि का रचयिता एक है, कहीं पर भी दुनिया में और दूसरी सृष्टि नहीं है। वो साधारण शब्द थे, सुनने वाले सुनते रहते, रोज हम सुनते हैं ये सब बातें, लेकिन इस पर कभी विचार किया कि कितनी गहरी बात। जो इस सृष्टि का क्रिएटर है, जो रचयिता है, वो अपनी रचना का ज्ञान दे रहा है। सृष्टि केवल एक है, मनुष्य सृष्टि एक है, ये रंगमंच है, सृष्टि एक मांडवा है, सूर्य चांद तारा गण इसकी बत्तियां हैं। आप इस बात को विचार करो, आज साइंटिस्ट कोई मंगल ग्रह जा रहा है, कोई चांद ग्रह जा रहा है, अरबों खरबों डॉलर खर्च करके वो दुनिया ढूंढ रहा है कि यहां दुनिया होगी, और भगवान अपना क्रिएटर इस रचना का ज्ञान दे रहा है कि बच्चे सृष्टि केवल यही है, रंगमंच एक ही है, तुम आत्माएं इसी सृष्टि पर पाठ बजाने आती हो, तुम्हारा असली घर परम धाम है, और ये जो समय है ये सबके वापस घर चलने का समय है। सबको मैं ले जाऊंगा, कोई माने या न माने, कोई प्यार प्रेम से चले, कोई योग करके विकर्मों को दग्ध करके चले, और नहीं अगर मानेगा तो मेरे पास साधन है, धर्मराज की पुरी में जाके उसके सब हिसाब किताब चुकतू करा के, जैसे मैंने ऊपर से भेजा था, जैसे तुम आत्मा ऊपर से आई थी, ऐसे ही मैं वापस घर ले जाऊंगा। अगर ज्ञानी तू आत्मा ये बात को समझ जाए कि जैसे मैं ऊपर से अवतरित हुई थी परमधाम से, जब पहले आई सतयुग में कैसी थी, संपूर्ण पावन योग बल से जन्म, कोई भी कर्म का बंधन नहीं, कर्तापन का भी भान नहीं, क्योंकि कर्म अकर्म हो रहे हैं, संगम की प्रालब्ध भोग रहे हैं, इतनी श्रेष्ठ पावन आत्मा ऊपर से उतरी और इस चक्र में आते 84 जन्म लेते लेते इतने बंधनों में बंध गई, कितने संबंध बना लिए, कितने बंधन बना लिए, और सब बंधन दुख देने वाले, बंधन माना दुख, संबंध में तो सुख था, सतयुग में भी संबंध था, देवताएं बिना संबंध के थोड़ी आ सकते, अगर माँ ही नहीं मिलती, पिता ही नहीं होता तो उनको जन्म मिलता क्या, संबंध सतयुग त्रेता में भी है, द्वापर कलयुग में भी संबंध हैं, लेकिन वो संबंध इस समय बंधन बन गए, हरेक बंधनों में बंधी हुई आत्मा दुखी है, परेशान है, चिंतित है, और क्या बंधन है सबसे बड़ा, ये मेरा है, मेरा है, बस बंधन यही है, और इस बंधन ने आत्मा को दुखी करके रखा। कहते एक व्यक्ति थे, उनका अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार था, खूब कमाया अच्छी तरह से, खूब धन इकट्ठा किया, एक फ्लोर दो फ्लोर मकान बनाया, मंजिले बनाते गए, और रोज उसको देख देख के खुश होते थे कि ये मकान ये कमरा मैं फलाने बच्चे को दूंगा, उस बच्चे के बच्चे को दूंगा, उस बच्ची के बच्चे को दूंगा, चार पांच मंजिल की कोठी, बहुत मेहनत करके दिन रात एक करके, खुद बहुत गरीबी में रहे, एक छोटी सी कुटिया में रहे, खूब कमाया और मकान बना के खड़ा कर दिया, और उसमें इतना अटैच होते गए, मेरा मेरा मेरा। एक दिन अचानक कुछ बिजली में फॉल्ट आया और उसमें आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गई, आग लगते ही बच्चे तो देख रहे थे तो जल रही बिल्डिंग, वो दौड़ करके आए, बाबूजी बाबूजी देखो आपकी बहुत बढ़िया मंजिल, जल रही है बिल्डिंग। अब जब बाहर कमरे से निकल के देखा, तड़पने लगे, दुखी हो गए, एकदम बीपी बढ़ गया, बेहोश होने लगे, तो उनका बच्चा भाग करके, बाबूजी क्या हुआ क्या हुआ, अरे देखो बेटा मैंने कितनी मेहनत से अपने को नहीं खिलाया, परिवार को नहीं दिया कुछ, और ये मकान बनाया बच्चों के लिए, अब मेरी आंखों के आगे जल रहा है, अब मुझे नहीं जीना, अब मुझे नहीं जीना। बच्चा समझदार था, कहता बाबूजी एक बात कहूं, मुझे बहुत जरूरत थी पैसे की, और आपसे मैं बता नहीं पाया, लेकिन ये बिल्डिंग तो मैंने बेच दी, ये तो मेरी है ही नहीं, ये देखो मेरे हाथ में चेक है। कागज का एक टुकड़ा दिखाया और उसका बीपी धीरे धीरे नॉर्मल हो, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, नहीं है मेरी, जलने दो। दुख कहाँ है भाई, जल वही रही बिल्डिंग, लेकिन वर्तमान समय जितने बंधन हैं, अगर इन बंधनों से आप मुक्त नहीं हुए तो फिर मेरे मेरे के दुख से छूट नहीं सकते। इसलिए बाबा अपने बच्चों को पक्का कराता है, जहां पर भी मेरापन है कहो बाबा ऐसा तेरा है, सब तेरा है, सब तेरा है, तेरा तेरा कहो तो तर जाओगे, और मेरा मेरा कहोगे तो फंसे रहोगे। ज्ञानी तू आत्मा वर्तमान समय किसी भी बंधन में नहीं बन सकते। सबसे बड़ा बंधन देह का, दूसरा बंधन संस्कारों का, तीसरा बंधन संबंधों का, चौथा बंधन अपने साधनों का, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा मेरा मेरा। अभी इसलिए सब बाबा के बच्चों को, ज्ञानी तो आत्मा, समझदार अनुभवी आत्मा को कोई भी बंधन में बंधना नहीं है। अमृत वेले से रात तक जो कर्माए करो, कर्म संन्यास नहीं है, लेकिन कर्म बंधन में न बांधे, इसलिए इस मेरे से मुक्त हो जाओ। शुक्रिया बाबा, ऐसे कहो, बाबा शुक्रिया, आपने ये काम हमसे करा लिया, मैंने किया, मैं करता, मैं नहीं करता तो कोई नहीं करता। कितना लोगों में अहंकार रहता है, एक छोटा सा मकान बनवा देंगे, थोड़ा सा सहयोग दे देंगे, फूल बहनों पर अधिकार रखें, मैंने मकान बनवा के दिया, बहनें मेरी इज्जत नहीं करती, मुझे पूछती नहीं, अभी काम निकल गया इनका। वो अहंकार का जो आवरण है, ज्ञानी तो आत्माएं उस आवरण से मुक्त हो जाती है, अगर अनुभव है तो ज्ञान का। सब कुछ करो, करने के तो कुछ मना ही नहीं है, लेकिन सब सेवाएं करते हुए कर्तापन का भान ना आए। तो ज्ञान की अगर सब्जेक्ट को यथार्थ किसी ने समझा है, अनुभव को में लाया है ज्ञान को, तो पाठ सबके साथ बजाएगा, कर्म सब करेगा, सेवाएं सब करेगा, लेकिन वो बंधेगा नहीं। किया, कहते नेकी किया, दरिया में डाला, इसके लिए नाम हो, मान हो, शान हो, कम से कम मधुबन वालों को तो पता हो, बड़ों को तो पता हो या न हो, मैंने तो अपना पुण्य जमा कर लिया, बाबा के खाते में तो जमा हो गया है, इतना निस्वार्थ भाव। वैसे तो बाबा कहता निष्काम सेवा तो केवल मैं ही करता हूं, कोई मेरा बच्चा नहीं करता, क्योंकि जो कुछ करेंगे उसका तो फल तो मिलेगा ही, बिना फल के तो कोई कर्म होता ही नहीं, कर्म फल सिद्धांत है, बीज है तो फल निकलेगा ही। अगर कर्म का बीज आपने बो दिया है, अच्छा बोया तो अच्छा फल है, गलत बोया तो गलत फल है, इसलिए बीज अविनाशी है। और इस बीज में कोई भी बंधन नया न बने, ये है ज्ञानी तू अनुभवी आत्मा का लक्षण। अब दूसरा, बाबा ने योग सिखाया, योग की सब्जेक्ट का अनुभव अगर हमने किया है तो उसकी निशानी क्या होगी? सुनते हैं मुरली में, मैं मुरली की बातें सुना रहा हूं, कोई इधर उधर की नहीं सुना रहा हूं। अगर योग यथार्थ है तो उसकी पहली निशानी है उसके अंग अंग शीतल और सुगंधित होंगे, उसकी उत्तेजनाएं शांत हो जाएंगी, आवेश और आवेग खत्म हो जाएगा। शीतल काया वाला योगी है, बाबा से योग है, परम पवित्र शक्ति के साथ योग है। और हम योग रोज लगाएं, और जब कोई छोटी सी बात आ जाए, चिड़चिड़े हो जाएं, गुस्से में आ जाएं, मुख से अपशब्द निकालने लगे, हमारा व्यवहार अशुद्ध हो जाए, क्या योग किया? कोई निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा, कोई बहुत अच्छी महिमा करेगा, कोई इधर उधर ग्लानी करेगा, ये तो दुनिया की रीति रिवाज है। अगर मैंने बाबा को याद किया, बाबा से शक्ति ली, बाबा से हमारा सही योग है, तो समानता की स्टेज है, चलो ठीक है। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, उनका जितना विरोध हुआ, मैं समझता हूं किसी भी ब्राह्मण आत्मा का इतना विरोध नहीं हुआ होगा। शिव बाबा गुप्त रीति से आए, शिव बाबा को तो कोई पहचाना नहीं, इसलिए गालियां तो खानी पड़ी ब्रह्मा बाबा को, सब लोग विरोधी हो गए, उनके सगे संबंधी विरोधी हो गए, ये दादा कहां से काला जादू से क्या गया, जिसको ऐसे दृष्टि देता है वो स्वर्ग में चला जाता है, ओम कह देता है तो सारी सभा ही नाचने लगती, डांस करने लगती, और बाबा के मैं कुछ नहीं करता, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब स्थापना का कार्य शिव बाबा करा रहे हैं, लेकिन माध्यम ये है। तो बाबा कई बार ऐसे कहते थे, वाट वेंदे ब्राह्मण फाथो, माना रास्ते चलते मैं ब्राह्मण फंस गया। बाबा को बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत कुछ सहन करना पड़ा। लोगों ने सामने सामने गालियां दी, मारने के प्रयास किए। एक बार कुछ लोग विरोधी हो गए एकदम कि ब्रह्मा बाबा, ये दादा लेखराज के कारण सब कुछ हो रहा है, इसको खत्म कर दो, पूरा हो जाएगी संस्था इनकी। तो पैसा दे करके 5 सिखों को भेज दिया, बड़े खूंखार ऐसे ड्रेस पहने हुए, हाथ में औजार लिए हुए। अंदर घुसे तो पहरे पर बहने बैठी थी, आपके दादाजी कहाँ हैं, उनसे मिलना है। उनको वाइब्रेशन आया, इनका वाइब्रेशन ठीक नहीं है, कुछ गलत भाव से आए हैं। उनको कहा बैठो थोड़ा, मैं देखती हूँ कहाँ हैं। तो उनको रोका, एक बहन रोक के रखा और दूसरी बहन भाग के बाबा के पास गई कि बाबा, जो 5-7 सरदार जी आए हैं, बहुत अंदर से भयानक लगते हैं, उनकी भावनाएं ठीक नहीं लगती हैं, और कहते हैं मुझे दादा से अभी मिलना है, क्या करूं बाबा। अच्छा बच्चे, कोई बात नहीं, आए हैं ना, बच्चे हैं ना, ले आओ। बाबा अपनी योग मुद्रा में ऐसे बैठ गए और ज्यों वो अंदर घुसे, बाबा की जगह पर उनको गुरु नानक के दर्शन हो गए। और ज्यों गुरु नानक को देखा, ऐसे पांचों ऐसे पट पैर पर लेटे हुए, और बाबा कहे बच्चे उठो, बच्चे उठो, क्या हुआ, उठो, क्यों आए हो, कुछ काम है क्या। और वो तो गुरु नानक के पैरों में लेटे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से बाबा ने उनको सीधा किया, उठाया बिठाया, बोलो बच्चे कुछ काम था क्या। बाबा आप साकार, हमारे गुरुदेव बैठे हैं, हमको तो लोगों ने आपको मारने के लिए भेजा है। बच्चे कोई बात, वो पहचानते नहीं है ना कौन है, आओ आओ प्रसाद ले आओ, टोली खिलाई और भेज दिया। ये थी उनकी योग की शक्ति। कभी डर नहीं लगा, निर्भय निश्चिंत। अगर योग है, भगवान हमारा साथी है, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, तो क्या इस वायुमंडल में भटकती हुई आत्माएं मेरा कुछ कर सकती हैं? कितना भी बड़ा तांत्रिक मांत्रिक हो, कितने भी बड़े इस दुनिया के अंदर आसुरी शक्तियां हो, सिर्फ बाबा कहता है वैर नहीं रखो, किसी से दुश्मनी नहीं रखो, आप निर्भय निश्चिंत बाबा के बच्चे हो, अपनी तरफ से सबको खुश करो, संतुष्ट करो, प्रसन्न करो, बाकी निर्भय रहो, डरो नहीं, निडर बनो। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसका कौन क्या कर सकता है। तो योग के अगर अच्छे अनुभव किसी ने किया है तो उसकी बहुत निश्चिंत स्थिति, निश्चित विजयी है वो, निश्चिंत स्थिति है, निर्भय है, निडर है, निर्वैर है, कोई से वैर विरोध नहीं रखता है। ये योग के गहरे अनुभवी आत्मा की निशानियां हैं। हम योग कर रहे हैं लेकिन कहां तक आत्मा पावन बनी है, स्वच्छ बनी है, हर प्रकार के व्यर्थ से वो मुक्त है। अगर बार बार वो व्यर्थ संकल्प अटैक करते हैं, बाबा कहते हैं यही सबसे बड़ी अपवित्रता है, योगी है वो। इसलिए सब चेक करना, कोई भी व्यर्थ विचारों में रमण करना, संकल्प विकल्प बन जाए, बुरे हो जाए, माना हमारा योग यथार्थ नहीं। यहां योग करके जाओ, बाहर निकलो, कुछ बात अच्छी न लगे, गुस्सा आ जाए, कट्टु बचन निकल जाए, जोर से बोल दो, जोश में आ जाओ, तो जितनी कमाई की वो सब गंवा दी। 4-5 दिन कमाई करके यहां से ट्रेन में जाना, और ट्रेन में बर्थ के कारण नीचे ऊपर हो जाए तो गुस्सा कर लेना, क्या होगा, होता ना ऐसे। ध्यान देना, हम योगी लोग हैं, क्या चाहिए, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर एडजस्ट करना पड़ता है। अपनी स्थिति को मुझे किसी भी परिस्थिति में डगमग होने नहीं देना है, वो है योगी। मेरी छोटी छोटी बात में बाबा कहता है, वो जैसे क्या होता है, एक छुई मुई का पौधा होता है ना, छुई मुई से देख रहा है ना, बाबा याद करता कई बार, ऐसे अगर टच कर दो ना मुरझा जाता है, टच भी नहीं करो सामने ऐसे हाथ कर दो तो भी लेट जाता है, ऐसे मुरझा जाता है। बाबा कहता है अभी तक मेरे बच्चे कहीं छुई हुई हैं, छोटी सी बात अगर कोई कह देता है, कुछ नीचे ऊपर हो जाता है, मान नहीं दिया, यहां तक भी अगर बहन जी ने प्यार से ओम शांति नहीं किया, पता नहीं यहाँ जी तो प्यार से मेरे को देख ही नहीं रही है, इन्होंने मेरे से ओम शांति नहीं किया, मूड खराब, छोटी छोटी बातें डिस्टर्ब कर दें, मूड खराब कर दें, खुशी गुम हो जाए, योग लगेगा? योग लगेगा पहले बताओ, लगता है ऐसे योग? कुछ भी मान लो, बोल दे, बड़ी बहनें बोल दें, परिवार में कोई बोल दे, तो कितनी जल्दी उसको आप डोंट केयर कर सकते हो, या क्यों बोल दिया, कैसे बोल दिया? कईयों की तो नींद ही फिट जाती, रात भर वही सोचते रहते, रोते रहते, ऐसे बोल दिया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, मैंने क्या किया था, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, क्या है ये स्थिति, क्या है? इसलिए सब बाबा के घर में योग करने आए हो ना, योग भट्टी, ऐसी स्थिति बना के जाओ, कुछ भी हो जाए मुझे अपने मन की स्थिति को हलचल में नहीं लाना, डगमग नहीं होना। ये बातें तो होंगी ही, जहां संगठन है, जहां परिवार है, जहां भिन्न संस्कार है, वहां कोई बातें हो ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बातों की परवाह नहीं करना, डरना नहीं इन बातों से, अपनी स्थिति को पक्का बनाओ, मजबूत करो। परिस्थितियां आए ही नहीं और कहो विघ्न आए ही नहीं और मैं विघ्न विनाशक बन जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? आज खेल के मैदान में कोई उतरता है और कहे भाई बॉल आएगा तो कहीं लग ना जाए मेरे को, मैं किनारे हो जाऊं, तो जीतेगा हो? वो तो आह्वान करता है बॉल मेरे पर आए और मैं किक करूं, मारूं, तब तो विजयी होता है। इसलिए कभी भी कोई बॉल से डरना नहीं, बॉल आएंगे, अनेक बातें आएंगी। तो दादी गुलजार बड़े रमणीकता से कहती थी, बहुत प्यार से क्लास में कहती थी, कोई कोई को अभी भी नींद आ रही, क्यों भाई इतने अच्छे क्लास में भी नींद आएगी तो क्या करोगे, तो आज जागृत हो जाओ, खड़ा करूं क्या, ऐसे क्यों मुंह करके बैठे, या ऊपर कोई देख रहा है, अमृत मिला क्या ऊपर से, सोने का समय थोड़ी है ये, सोने का समय है क्या, सब जागृत होके बैठो, अगर वो आजू बाजू सो रहा हो तो जगा देना। तो दादी जी कहती थी, कई मेरे ऐसे बाबा के बच्चे हैं, बातें आती हैं चली जाती हैं, वो नहीं ठहरती 5 मिनट भी, आई और गई, लेकिन वो बच्चे उनको पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसी बात हो गई, ये हो गई, ये बातों से भी, बातें समझदार हैं और बाबा के बच्चे इतने बेसमझ बन गए, एक दिन दो दिन तीन दिन सोचते रहते, दुखी होते रहते, परेशान, अरे जिसने बोला वो भी भूल गया कि मैंने बोला भी था कुछ, लेकिन जिसको बोल दिया वो अपने को बस मूड खराब के बैठा, क्या योगी है वो। इसलिए योग का अर्थ ही है निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख मान हानि सब में समान स्थिति, बहुत निश्चिंत निर्भय अडोल अचल एकरस स्थिति बनाना ही योगी जीवन का अनुभव है। क्या अनुभव किया, हमने बिंदु देख लिया, हमने लाइट देख लिया, ऐसा ऐसा था ऐसा, अरे क्या देख लिया, देख के क्या किया, क्या मिल गया देख करके, भाई कनेक्शन अगर जुट गया, बाबा मिल गया, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला सारी दुनिया का मालिक हमारे साथ है, हम उसके साथ कंबाइंड है, तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? छोटी छोटी बातों में सोडा वाटर नहीं बनना, डिस्टर्ब नहीं होना, सोडा वाटर समझते ना, खोली फुर से ऊपर उड़ गया पानी, अभी अभी बहुत नशा और अभी अभी देखो पता नहीं क्या हो गया। तो योगी जीवन माना, अगर अच्छे अनुभव हमने किए हैं योग के, एक रस स्थिति होगी, सब बातें आएंगी जाएंगी, हमको परवाह नहीं है, हमारे साथ बाबा कंबाइंड है, ठीक है। और तीसरा बाबा ने कहा है, बच्चे दिव्य गुणों का अनुभव करो, एक एक गुण धारण करने के लिए कुछ सहन करना पड़ेगा, कुछ सामना करना पड़ेगा, लेकिन धरत परिये धर्म न छोड़िए, धारणाओं का आधार है धर्म, धर्म की परिभाषा है धारणाएं, हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म है हमारी मूल दिव्य गुणों की धारणाएं, ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, हम कौन हैं, हम तो देवता बनने वाले दिव्य गुण मूर्ति आत्माएं हैं। तो ऐसे दिव्य गुण हमारे चलन से, हमारे चेहरे से, हमारे व्यवहार से दिखाई दें, कितना अंतर्मुखी हैं, कितना रमणीक हैं, कितना गंभीर हैं, कितना हर्षित चित्त हैं। दादी जानकी हमें 5 गुणों पर लास्ट में ध्यान खिंचवाती थी, देखा ना दादी को, किसने किसने दादी को देखा है, सभी ने लगभग देखा, दादी तो अभी गई है ना, इसलिए दादी जी के 5 गुण याद रखना। वो 5 गुण अगर हमारे जीवन में आएंगे तो बाकी 36 गुण अपने आप आ जाएंगे। उसमें सबसे पहला गुण था सत्यता, मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं, इसका अनुभव करो। एक सच्चाई है और दूसरी सत्यता, अविनाशी को कहते सत्य, सत्य और सच, आत्मा अविनाशी है। अगर हम आत्मभिमानी स्थिति में रह करके कोई बात कह रहे हैं, माना वो सच कह रहे हैं, और अगर हम देहमान में रह करके कुछ भी बोल रहे हैं, वो सच नहीं हो सकता, क्योंकि पहला हमारा आधार जो है वही गलत है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे सत्य स्वरूप में स्थित होकर के फिर जो कहें उसमें कथनी और करनी में समानता हो, कहें कुछ करें कुछ, लोगों का विश्वास उतर जाता। क्या ये कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए और खुद ही लड़ते झगड़ते हैं, कहते हैं भाई भ्रष्टाचार नहीं करो, पैसा के लेन देन ऐसा नहीं करो, और खुद ही छल कपट करते हैं। बाबा के बच्चे ऐसा धंधा नहीं कर सकते, कुछ भी हो, सच्ची कमाई खानी है, 2 नंबर का नहीं चाहिए, नहीं तो दुख होगा, परेशानी होगी, कभी भी घर के अंदर सुख शांति नहीं होती। कई जगह पर कईयों को रिश्वत लेनी पड़ती है, जबरदस्ती लेनी पड़ती है, बाबा कहता फंसना नहीं, लेनी पड़ती है, भले लो लेकिन वो सफल करो, अच्छे काम में लगाओ, भोजन नहीं आना चाहिए, ब्राह्मणों के पेट में सच्ची कमाई आनी चाहिए। इसलिए बाबा के घर में आता है ना, बहुत वैरायटी पैसा आ जाता है। बाबा कैसे जादूगर है कि अपने ब्राह्मण बच्चों के पेट में वो नहीं जाना चाहिए, भले मकान तोड़ो जोड़ो बनाओ जाकर के। हम सब बाबा के गुणवान बच्चे हैं और गुणों का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी चलन, चेहरा, बोल चाल, व्यवहार, उसमें सब गुण झलकने चाहिए, चेहरे से दिखाई दे, कितनी प्योर आत्मा। तो पहली सत्यता में कथनी करने की समानता है और दूसरी पवित्रता है, दृष्टि की, वृत्ति की, बोल की, कर्म की, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता, ये दूसरा गुण है आत्मा का। तीसरा सबसे मुख्य गुण है हमारी वाणी की मधुरता, सरलता। चौथा गुण है बहुत धैर्यता, कोई भी बात को तुरंत कट नहीं करना, कोई बात तुरंत उतावले नहीं होना, तुरंत डिस्टर्ब नहीं हो, थोड़ा सुनो, विचार करो, धैर्यता बहुत बड़ा ब्राह्मणों का श्रृंगार है। जितने डिस्टर्बेंस होते हैं ना, झगड़े होते हैं, कोई छोटी छोटी बातें होती, उसका मूल कारण अधैर्य है। पर भाई पेपर किसके आगे नहीं है, बातें किसके आगे नहीं आती है, दादियों ने कैसे सामना किया, कोई भी गलत बात पे जाए दादी के आगे, हम तो साथ रहे हैं बहुत समय, दादी के पास कोई भी जाए, गलत विचार लेकर के भी जाए, दादी तुरंत उसको कट नहीं करती थी, अच्छा तुमने बहुत अच्छा विचार किया है, ठीक है इस पर हम विचार करेंगे, धैर्यता से जवाब देना, उसको तुरंत नहीं कहना क्या विचार किया, छोड़ो ठीक नहीं है। हर बात में, कारोबार में, किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, कहीं फंस ही जाओ मान लो, थोड़ा धैर्यता से, शांति से, बाबा को प्यार से याद करके फिर बोलो, फिर करो, फिर चलो। अगर ऐसी पावर है तो आपके पास और 2 पावर आएंगे, जैसे पहले बताई थी ना, क्या बताई थी, 2 पावर, एक कंट्रोलिंग, एक रूलिंग, ऐसे 2 और पावर आ जाएंगी जिनके अंदर गुण है, वो आएगी बाबा की टचिंग, टचिंग पावर, टच हो, करना है या नहीं करना है। बाबा कहता है मैं अपने बच्चों को टच तो करता हूं, ये राइट है, ये नहीं करना, ये रांग है। लेकिन मेरे बच्चे इतने अधीन हो जाते हैं, विचार ही नहीं करते हैं, टचिंग को कैच नहीं करते। आप सब इस पावर को बढ़ाना, जिसके पास बाबा की टचिंग्स आ रही हैं, जिसके पास पूरे नाटक की टचिंग्स हैं, कल क्या होने वाला है, ड्रामा में क्या नूंद है, वही संकल्प उठे, वही कर्म हो जो ड्रामा की नूंद है, सब दिव्य गुण अपने आप आ जाएंगे। लेकिन धैर्यता से ध्यान देना, बाबा की टचिंग को हम कैच करें, और कैच वही कर सकेगा जिसकी बुद्धि कहीं भी इंगेज नहीं है। इंगेज नहीं रखो, कहीं बहुत इंगेज कर देते हैं, इधर उधर के विचारों में, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ये सरकार ऐसे करे, वो सरकार ऐसे करे, इस देश में ये हो गया उस देश, अरे क्यों, जिसे लेना देना नहीं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या लेना देना आपका उससे, योग करो, कुछ शांति का दान दो, जो होगा तो सब अच्छा ही होगा ना, ड्रामा में गलत होने वाला है क्या कुछ, जब ड्रामा कल्याणकारी है, इसका क्रिएटर स्वयं बाबा है, वो हमारा बाबा है, तो ड्रामा में कुछ भी होगा उसमें सब में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है, दिखाई नहीं देता। अब कहेंगे वर्ड वार हो गई, ये हो गया वो हो गया, और सोचने वाले तो पता नहीं क्या क्या सोच लेते, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ऐसा, और बाबा मुस्कुराता है, अरे बच्चे क्या हो जाएगा, ड्रामा तो कल्याणकारी है, पुरानी दुनिया को जाना है, जाने के तरीके हैं, ये जाएगी तब तो नहीं आएगी, ऐसे थोड़ी ऊपर से आ जाएगी, स्वर्ग कैसे आएगा, इसे नरक में आ जाएगा क्या, इसका तो विनाश करना ही पड़ेगा ना, और सफाई करने के लिए प्राकृतिक उछल नहीं होगी। बाबा कहता मेरे पांच जो है ना बड़े अच्छे सेवाधारी साथी हैं, ये पांच तत्व तो प्रकृति के, कोई झाड़ू उठाएगा, कोई बहाएगा पानी डालेगा, कोई हिलाएगा, कोई डुबोएगा, पांचों तत्वों का एक साथ वार होगा और तब ये सृष्टि परिवर्तन होगी। अब हम थोड़ी बातों में ये हो गया ऐसा हो गया, खुद डिस्टर्ब हो, दूसरों को सुनाए, उसको डिस्टर्ब कर दें, बाबा कहता तुम योग करना, शांति से बैठ, सब अच्छा होगा, अधैर्य नहीं हो जाओ। तो चार गुण हुए, सत्यता, पवित्रता, मधुरता, धैर्यता, और अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत अच्छी नम्रता, नम्र चित्त बन करके, निर्माण बन करके, झुक करके चलना सीख लो, कभी भी टकराव पैदा नहीं होगा, कुछ भी हुआ, अच्छा मान लो कोई बात हो भी गई, कोई डिस्टर्ब हो रहा मेरे से, बाबा कहता है दादी हमारी बहुत प्यार से सिखाती थी, बहनों के क्लास में कहती थी, अरे बच्चे सारी कर लो ना, साड़ी नहीं खराब होगी, सारी करो, सारी हार मान लो, हारमोनी हो जाएगी, हार ही नहीं मानता है, अपने जिद में मैं राइट हूं। बाबा कहता है जो सत्य होता है ना उसको सिद्ध किया ही नहीं जाता, वो अपने आप सिद्ध हो जाता है, इसलिए अपने नम्रचित व्यवहार को बदलो नहीं, बहुत नम्रता से झुक करके, सॉरी करके, हार मान करके हारमोनी रखो, न डिस्टर्ब हो न डिस्टर्ब करो, तब कहेंगे इन्होंने चारों सब्जेक्ट को यथार्थ समझा है, और फिर उनकी चलन से, चेहरे से, बोल से, व्यवहार से, उनको देख करके सेवा होगी। सेवा मतलब, सेवा का अर्थ क्या है, सेवा भाव क्यों कहते हैं, सेवा, सेवा शब्द एक बात को सिद्ध करता है, सेवाधारी माना, सुख देना, सुख लेना, सेवा शब्द ही सुख देने लेने की, स्वार्थ नहीं है उसके अंदर, अगर उसके अंदर स्वार्थ भरा हुआ तो सेवा नहीं है, वो नौकरी है। हम सब सेवा कर रहे हैं, और सेवा का हम फल चाहें, हमारा नाम हो, मान हो, शान हो, हमें पद मिले, पोजीशन मिले, कोई मकान मिले, अरे किस लिए सेवा कर रहे हो, कहीं तो इसलिए सेवा करते हैं, यहां सेवा करेंगे अच्छा मकान मिल जाएगा, ये सेवा है क्या, स्वार्थ है वो तो। बाबा ने सच्चे दिल से सच्ची सेवा करना सिखाया, सुख दो सुख लो, संतुष्ट रहो संतुष्ट करो, दुआएं दो दुआएं लो, ये है सेवा। अगर सेवा करें और कोई बददुआ दे, हम सेवा करें चले सुख देने के लिए, कोई टकराव में आ जाए, तेरे मेरे में आ जाए, तू मेरी एरिया में क्यों आ गया, तेरी एरिया में, कहां से तू एरिया लाई थी, लड़ रहे हैं इसके पीछे, ध्यान देना इस बात को, वो सेवा है, उसको सेवा कहेंगे। कितना भी विस्तार कर लो, बाबा कहता 1000 सेंटर खोल लो, मेरी लिस्ट में तो वही जो निर्विघ्न है वही सेंटर है। भगवान की लिस्ट से वो बाहर हैं सब, इंसान दिखा रहा है मेरे इतने सेंटर से, इतने स्टूडेंट हैं, बाबा की लिस्ट से बाहर है वो। तो सच्चा सेवाधारी अगर सेवा को उसने समझा है, उसका अनुभव है, तो सुख देता है, सुख लेता है, दृष्टि से भी सुख, बोल से भी सुख, कर्म से भी सुख। तो ऐसे सच्चे सेवाधारी बन करके चारों सब्जेक्ट के अनुभवी बनो, समझ गए चारों सब्जेक्ट। ज्ञान के अनुभवी निर्बंधन है, योग के अनुभवी पावन है, सतो प्रधान है, एक रस है, गुणों के अनुभवी जिन्होंने दिव्य गुणों का अनुभव किया है वो सब अपने चलन से चेहरे से सेवा करते हैं, गुणवान हैं, धैर्यवान हैं, नम्रचित हैं और सेवाधारी सुख दे रहे हैं, सुख ले रहे हैं। तो वर्तमान समय हम सब बाबा के बच्चों को केवल सुनाना नहीं है लोगों को, लेकिन हमारे जीवन में वो सब गुण, सब पढ़ाई दिखाई देनी चाहिए, प्रैक्टिकल दिखाई दे। हाँ, इन्होंने मुरली को समझाया है, सुनते तो सब हैं मुरली, सुनते हैं ना सभी। अगर मुरली को यथार्थ समझा है तो हमारी जीवन से मुरली दिखाई देनी चाहिए, किसने समझा है बाबा को। बाबा को समझाए तो बाबा की मुरली समझ में आएगी, बाबा को नहीं समझा तो मुरली क्या समझ में आएगी। तो सभी बाबा के बच्चे खूब भरपूर होके जाना, ठीक है, सबका कल्याण तभी तो कर पाएंगे। तो आप सबको बाबा ने कल्याण में रखा है, इष्ट कल्याण बोला ना, कहां से आए हैं सब, कल्याण वेश से आए हैं। ये कल्याण का ग्रुप नीचे भी था, कल एक ग्रुप मैंने नीचे भी कल्याण का देखा, मनमोहिनी में थोड़े वहां भी थे कल्याण सब जो। चलो अच्छा है, सब बाबा के घर से, शिव बाबा कल्याणकारी है और आप बच्चे कल्याण में रहने वाले हैं तो कल्याणकारी है ना सब। चलो 5 मिनट के लिए सब देह से न्यारे हो जाओ, अशरीरी बन के बैठो, अपने चमकते हुए सितारे को देखो, योग की यथार्थ अनुभूति, देह और देही का अलग अनुभव होना, देह देही, आत्मा शरीर। तो इस अनुभव में बैठो कि शरीर अलग है, मैं एक चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं और बाबा की पवित्र किरणें यहां पर डायरेक्ट आ रही हैं, पवित्रता की किरणें आ रही हैं और वो चारों तरफ वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही है।
Thank you. खुशी।